पृष्ठ संख्या 226, अध्याय 12, राग सुर मल्हार। सुप्रसिद्ध राग सुर मल्हार काफी थाट का राग है। इस राग के आरोह में गंधार धैवत तथा अवरोह में गंधार वर्जित है, अतः इसकी जाति औडव शाडव है। इसमें दोनों ही निषाद प्रयुक्त होते हैं। आरोह में शुद्ध एवं अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। शेष सभी स्वर शुद्ध हैं। प्रस्तुत राग में वादी स्वर के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मध्यम षड्ज को वादी संवादि मानते हैं, परंतु दूसरी ओर कुछ विद्वान पंचम को वादित्व प्रदान करते हैं। लेखक के मतानुसार मध्यम को वादित्व प्रदान करना अधिक न्याय संगत और समीचीन होगा। प्रस्तुत राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। वस्तुतः सुर मल्हार एक मौसमी राग है, अतः मौसमी राग होने के नाते यह वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। इस राग की रचना महान संगीतज्ञ सूरदास जी के द्वारा हुई है, ऐसा विद्वानों का कथन है। यही कारण है कि इसको सुरदासी मल्हार भी कहते हैं। संगीत मर्मज्ञों के मतानुसार प्रस्तुत राग की रचना मल्हार और सारंग के मिश्रण से होती है। मध्यमवादी होने के नाते इसको पूर्वांग प्रधान राग कहना चाहिए, परंतु पूर्वांगवादी राग होने पर भी इसका विस्तार मध्य और तार सप्तक में अधिक होता है। तार षड्ज पर यह राग अधिक चमकता है। इस राग में षड्ज, मध्यम तथा पंचम न्यास बहुत्व के स्वर हैं। धैवत का इसमें अल्पत्व है। सूर मल्हार में म रे तथा रे प की संगति बड़ी सुहावनी तथा मल्हार अंग का सूचक है। इसके अतिरिक्त इसमें कोमल नी प, कोमल नी म प, म कोमल नी ध प आदि स्वर समूह अधिक प्रयुक्त होते हैं। इस राग में धैवत को कभी भी दीर्घ नहीं करना चाहिए, अन्यथा राग नारायणी की स्पष्ट छाया पड़ने लगेगी। ऋषभ पर भी इस राग में न्यास नहीं करना चाहिए, जैसे म रे प म रे कोमल नी प म रे। इससे सुर मल्हार का स्वरूप नष्ट हो जाएगा और सारंग अंग अधिक दिखेगा। प्रस्तुत राग की रचना किन रागों के मिश्रण से हुई है? इस प्रश्न पर सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ संगीताचार्य जो कि इसमें धैवत का प्रयोग नहीं करते हैं, वे इसमें मल्हार और सारंग का मिश्रण मानते हैं, परंतु अन्य विद्वान जो कि प्रस्तुत राग में धैवत प्रयोग करते हैं, वे इसमें मल्हार, सारंग तथा देश अथवा सोरठ का मिश्रण मानते हैं, क्योंकि जब सुर मल्हार में तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प रे म प कोमल नी ध प स्वर समुदाय का प्रयोग करते हैं, तो देश की स्पष्ट छाया आने लगती है। इसी स्वर समुदाय के प्रयोग से यह राग सजता है। केवल इस स्वर समुदाय के आगे रे म रे रे प प म प रे म इस प्रकार स्वर समुदाय को जोड़ने की आवश्यकता रहती है, जिससे मल्हार की पुष्टि हो जाती है। इसमें प रे म म रे रे प यह मल्हार कोमल नी प रे म प कोमल नी म प नी तार सा तार रे तार सा यह सारंग तथा तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प रे म प कोमल नी ध प यह देश का स्वर समुदाय है। इन तीनों रागों के मिश्रण से सुर मल्हार की सृष्टि होती है। जो विद्वान इसमें केवल सारंग और मल्हार का मिश्रण मानते हैं, वे यदि धैवत न लगावें तो अधिक अच्छा होगा। हाथियों की उत्तरांग में सारंग जैसे म प कोमल नी प शुद्ध नी तार सा प शुद्ध नी तार सा तार रे तार सा कोमल नी प और पूर्वांग में मल्हार जैसे रे रे प रे म रे रे प रे म रे सा। इन दोनों के मिश्रण से सुर मल्हार बन जाता है। सुर मल्हार के दोनों प्रकार अपनी अपनी विशेषता के कारण अन्य रागों से भिन्न हो जाते हैं। पंडित भातखंडे जी द्वारा रचित क्रमिक पुस्तक मालिका में सुर मल्हार राग में जितनी बंदिशें हैं उनमें केवल एक धमार को छोड़कर किसी में भी धैवत का प्रयोग नहीं हुआ है। पृष्ठ संख्या 227। कुछ गायक वादक आज भी बिना धैवत लगाए सुर मल्हार को गाते बजाते हैं। कुछ विद्वान सुर मल्हार में कोमल गंधार का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह प्रचार में अधिक नहीं है। जो लोग कोमल गंधार का प्रयोग करते हैं वे कोमल ग म रे सा अथवा रे कोमल ग रे सा इस प्रकार करते हैं। राग नारायणी, सामंत सारंग, देश, सोरठ इसके समप्रकृति राग हैं, परंतु इन सभी रागों का वादी स्वर पंचम अथवा ऋषभ है। दूसरी ओर सुर मल्हार का वादी स्वर मध्यम है। इस कारण सभी रागों से इसका स्वरूप भिन्न हो जाता है। राग नारायणी दुर्गा अंग का राग है। इस कारण इससे अलग ही दृष्टव्य होता है। सामंत सारंग में केवल देश का मिश्रण है और सारंग अंग से गाया जाता है। राग देश एवं सोरठ में गंधार धैवत दोनों ही स्वरों का प्रयोग होता है। इस कारण इन सभी रागों से सुर मल्हार पृथक है। सुर मल्हार का मुख्य स्वर इस प्रकार है, यथा सा रे म रे रे प रे म प कोमल नी म प रे म प कोमल नी ध म प कोमल नी ध प प रे म म रे मंद्रणी सा। बड़हंस सारंग तथा वृंदावनी सारंग से भी यह मध्यम वादी होने के कारण भिन्न है। स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। सुर मल्हार में ऋषभ का आरोह अवरोह दोनों में ही अलंघन बहुत्व है। ऋषभ का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, यथा सा रे म व प म रे म, म का मींड लिए हुए रे, मंद्रणी सा। इसके अतिरिक्त जब ऋषभ की पुनरावृत्ति होती है जैसे म कड़युक्त रे म कड़युक्त रे प, तो ऋषभ पर मध्यम का कर लगा दिया जाता है। मध्यम का इस राग में आंशिक न्यास बहुत्व है। जब आरोह में रे रे प और अवरोह में प रे म करते हैं तो मध्यम का लंघन हो जाया करता है, परंतु मध्यम का प्रयोग सा रे म प प म रे म म प रे म प कोमल नी म प रे म इस प्रकार स्पष्ट रूप में किया जाता है। इसी से मल्हार अंग होने का परिचय मिलता है। पृष्ठ संख्या 228। पंचम का प्रस्तुत राग में संपूर्ण न्यास बहुत्व है, क्योंकि आरोह अवरोह दोनों ही तरफ से इस पर न्यास किया जाता है तथा रे म म प कोमल नी प म प कोमल नी ध म प कोमल नी ध प धैवत का रागसुर मल्हार में लंघन तथा अनाभ्यास दोनों ही प्रकार का अल्पत्व है। जब हम तार सा कोमल नी प व तार सा कोमल नी म प आदि स्वर संगति का प्रयोग करते हैं तो धैवत का लंघन हो जाता है। साथ ही जब हम तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प इस प्रकार धैवत का प्रयोग करते हैं तो धैवत का अनाभ्यास अल्पत्व हो जाता है, क्योंकि शुद्ध नी के बाद धैवत पर बिल्कुल न रुककर सीधे मध्यम पर चले जाते हैं, या कोमल नी ध के पश्चात कोमल नी म प रे म ऐसा स्वर समूह आवश्यक हो जाता है जिससे रागदेश का भ्रम दूर हो जाए। शुद्ध निषाद का आरोह में तथा कोमल निषाद अवरोह में सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, कभी भी ईश्वर को छोड़ते नहीं, अतः निषाद का इस राग में अलंगन बहुत्व कह सकते हैं। आरोह सा रे म प नी तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प म रे म रे मंद्र नी सा। मुख्य स्वरूप तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प कोमल नी म प म रे प म रे मंद्र नी सा।